नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को हम भी याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। You are tuned to Parikrama 100.1 FM and for you we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi hails Constitution of India as a guiding light of the nation that has stood the test of time.
आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से अगले महीने महाकुंभ में भाग लेते हुए एकता की भावना अपनाने और समाज में विभाजन तथा नफरत समाप्त करने का आग्रह किया।
Prime Minister expresses satisfaction over WHO reporting 80% reduction in malaria cases and deaths in India between 2015 and 2023, says Ayushman Bharat Yojana has led to timely treatment of 90% of cancer patients in the country.
दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान हादसे में 124 लोगों की मृत्यु।
Minimum temperatures in northwest India are likely to drop by 3 to 5 degrees Celsius to the next 2 days. Srinagar Jammu National Highway reopen for traffic.
और भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन बनी।
Yes, and now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the fight against malaria and International Cello Day. Well, to start off with the first topic, that is the fight against malaria, Mukesh. In the Mann Ki Baat edition today, Prime Minister Narendra Modi highlighted big achievements of India in the field of health. This achievement has been in the fight against malaria.
भारत में मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है।
मलेरिया परजीवियों के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलती है। ये उष्णकटिबंधीय देशों में भौगोलिक रूप से प्रचलित है।
Yes, and malaria mostly spreads to people through the bites of some infected female anopheles mosquitoes. Blood transfusion and transfusion and contaminated needles may also transmit malaria. And malaria can be prevented by avoiding mosquito bites and with medicines. Treatments can stop mild cases from getting worse.
यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। यह रोकथाम योग्य और इलाज योग्य है। यह बीमारी जीवन के लिए खतरा हो सकती है। इसके हल्के लक्षणों में बुखार, ठंड लगना और सिर दर्द शामिल है। गंभीर लक्षणों में थकान, भ्रम, दौरे और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। शिशुओं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और लड़कियों, HIV या एड्स के रोगियों के लिए गंभीर संक्रमण का खतरा हो सकता है।
Yes, and the Prime Minister Narendra Modi expressed satisfaction that the World Health Organization report mentions that there has been an 80% reduction in India in the number of malaria cases and deaths due to it between 2015 and 2023. He said that this is no mean achievement.
प्रधानमंत्री ने इसे सुखद बताते हुए कहा कि सभी की भागीदारी से सफलता प्राप्त हुई है। श्री मोदी ने बताया कि असम के जोरहाट के चाय बागानों में 4 साल पहले तक मलेरिया लोगों के लिए चिंता का एक कारण हुआ करता था, लेकिन जब चाय बागानवासी इसे मिटाने के लिए एकजुट हुए तो उन्हें काफी हद तक सफलता मिली।
Yes, and Prime Minister also praised Kurukshetra district of Haryana for presenting a very good model for controlling malaria. In Kurukshetra, public participation for monitoring malaria has been quite successful and street plays and radio helped in spreading awareness towards reducing the breeding of mosquitoes.
जी हाँ, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि मलेरिया के वार्षिक मामलों की संख्या आजादी के समय 7.5 करोड़ से घटकर 2023 तक 97% से अधिक की कमी के साथ 20 लाख रह गई है। भारत 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के उच्च प्रभाव वाले समूह से बाहर निकल गया है, जो मलेरिया के खिलाफ उसकी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
Yes, and in 2023, zero malaria cases were reported in 122 districts across various states. And India is making strides in its march towards a malaria-free nation while setting global benchmarks in public health. Government is working with the vision of achieving malaria-free status by 2030 with comprehensive and multi-pronged strategies like the National Framework for Malaria Elimination and the National Strategic Plan for Malaria Elimination.
और अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के बारे में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि भारत ने देश में विशेष रूप से अपने उच्च स्थानिक राज्यों में मलेरिया के मामलों और संबंधित मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन किया है.
Yes, and the stakeholders had gathered at the meeting in the UK Parliament complex to reflect on the report's findings and make the case that investing in ending malaria is the economically smart thing to do. And during the meeting, the stakeholders praised the contributions of India's community health workers, mostly women, who are effectively reducing malaria in remote areas. And it was noted how community health workers in India, comprising mainly women, are reaching remote populations and significantly driving down malaria cases and deaths.
बिल्कुल अभिषेक, रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने उच्च स्थानिक राज्यों में देखी गई मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति के कारण भारत इस वर्ष आधिकारिक तौर पर उच्च प्रभाव वाले समूह से बाहर निकल आया है. ये पहल मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित करती है, मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में, क्योंकि अफ्रीका में वैश्विक मलेरिया से होने वाली 95% मौत होती हैं, जिसमें बच्चे सबसे अधिक असुरक्षित हैं.
So to lower the risk of getting malaria by avoiding mosquito bites, we advise the listeners use mosquito nets when sleeping in places where malaria is present, and then of course use mosquito repellents after dusk.
जैसे आपने बताया अभिषेक कि जो मच्छरदानी है वो सबसे अच्छा उपाय है मच्छर से बचने के लिए, क्योंकि अगर हम कुछ और भी उपाय करते हैं तो उससे सांस में तकलीफ हो सकती है, चाहे हम वेपोराइजर हो चाहे हम कॉइल है. हालांकि उनसे मच्छरों से बचाव जरूर होता है, लेकिन मच्छरदानी सबसे अच्छा उपाय है. इसके अलावा कॉइल और वेपोराइजर का जैसे हमने अभी बात की उसका उपयोग कर सकते हैं, सुरक्षात्मक कपड़े पहन सकते हैं और विंडो स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं. जैसे खिड़कियां हैं उनमें मच्छरदानी जो है मच्छर जाली होती है उसको लगाएं तो उससे मच्छर अंदर नहीं आएंगे और उनसे काफी बचाव होगा.
Yes, very good suggestions from Mukesh. So that concludes our first part of our Dateline section. And now moving on to our second part of the Dateline section, that is the International Cello Day. And we start off with the words of Pablo Casals, who said, "Music is never the same for me, never. Every day there's something new, fantastic and extraordinary. Back like nature is a miracle." International Cello Day is an annual event that is observed on December 29th in several countries around the world.
जी हाँ, 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संगीतकारों में से एक की विरासत को जीवित रखते हुए पाब्लो कैसल्स का नाम कैटेलोनिया, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका, प्यूर्टोलिको और जापान के संग्रहालयों, त्योहारों और सभागारों में याद किया जाता है.
Yes, and the day aims to honor the life and contributions of the legendary cellist Pablo Casals, was born on this day. Casals is believed to be one of the greatest cellists of all time and is credited with elevating the cello to its prominent status as a solo instrument in classical music.
बिल्कुल, कैसल्स न केवल एक चेलिस्ट थे बल्कि संगीतकार, कंडक्टर और शांति तथा मानवाधिकारों के वकील भी थे. वार्षिक कार्यक्रम संगीतकारों, शिक्षकों और प्रशंसकों के लिए एक साथ आने और चेलो के प्रति उनके साझा जुनून का उत्सव मनाने के दिन के रूप में कार्य करता है. चेलो की रेंज मानव आवाज के करीब है, जो गहरे समृद्ध स्वर से लेकर उच्च स्वर वाली धुनों तक सब कुछ उत्पन्न करने में सक्षम है.
Yes, and once overshadowed by other string instruments, the cello now enjoys solo status thanks in part to Casals' influence. And it is interesting to know that throughout his life, Pablo Casals placed music at the service of the ideals of peace, justice and freedom. In 1917, he refused to play in the Soviet Russia. And a few years later, in 1933, he refused to play in Hitler's Germany. From exile, he helped thousands of refugees from the Spanish Civil War. And with the Second World War, he intensified his commitment and his benefit concerts for the victims. In 1946, he refused to play for the Allied countries because of the tolerance towards General Franco's regime, and he went into a long musical silence.
बिल्कुल, पाब्लो कैसल्स ने कहा था कि अपने देश से प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन हमें सीमा पर क्यों रुकना चाहिए? हम सभी एक ही पेड़ के पत्ते हैं और पेड़ मानवता है।
Yes, and music teaches people about the world and provides a window into other cultures. The more we connect with others, the more we can learn, work and grow together. The language of music is common to all generations and nations. It is understood by everybody since it is understood with the heart. So, Jaron Lanier, Mukesh, very beautifully said that if there's any object in human experience that's a precedent for what a computer should be like, it's a musical instrument, a device where you can explore a huge range of possibilities through an interface that connects your mind and your body, allowing you to be emotionally authentic and expressive. And on a personal level, Mukesh, I did try to learn play the guitar for a brief period of time, and you know that just like the guitar is any other musical instrument for that matter, has many benefits. You know, it reduces stress, produces patience and perseverance, develops music appreciation, cultivates creativity, it uses every part of the brain, strengthens your immune system, increases emotional perception, and it also breeds confidence. So we see playing a musical instrument can be highly beneficial to us. So take your pick, whether it is the guitar, the electric guitar, acoustic guitar, drums, whatever. Just play any instrument today. What about you? Have you tried to play any instrument?
बिल्कुल, संगीत एक ऐसी चीज है जो आपको फायदा ही करती है. संगीत से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं और उनसे निश्चित तौर पर हमारे मन, मस्तिष्क और पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है.
Yes, and so to close our discussion, I want to leave our listeners with the words of Irene Nemirovsky, who said, "For music alone can abolish differences of language or culture, but in two people and invoke something indestructible within them."
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है. तो सबसे पहले हम चल रहे हैं महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की टीमों ने राष्ट्रीय गोल बॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है. गोल बॉल एक ऐसा खेल है जो दृष्टिहीन खिलाड़ियों के लिए तैयार किया गया है. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी आंखों की रोशनी खो चुके सैनिकों के लिए इसका आविष्कार किया गया था. अब ये खेल पैरालंपिक का भी हिस्सा है. अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी मुंबई संवाददाता के पास.
दृष्टिहीन बच्चों की चौथी राष्ट्रीय गोल बॉल प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने जीत हासिल की है. महाराष्ट्र के गोंदिया में 25 से 28 दिसंबर के दौरान हुई स्पर्धा के अंतिम मैच में महाराष्ट्र की महिला टीम ने हरियाणा को और पुरुष टीम ने गुजरात को हराया. इस स्पर्धा के बारे में विदर्भ माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा,
यह संकल्पना मुझे इस प्रकार से आई, गोल बॉल के बारे में जब जानकारी मिली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ क्यों ना गोंदिया में एक टूर्नामेंट कराया जाए जिससे दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं उनको लाभ मिल सके.
गोंदिया की दृष्टिहीन गोल बॉल खिलाड़ी सुरुचि गुप्ता भी महाराष्ट्र की टीम का हिस्सा थी. उनकी यात्रा के बारे में ओम प्रकाश गुप्ता कहते हैं,
उसे भी पुणे से जानकारी मिली कि गोल बॉल खेल है जिसका स्टेट टूर्नामेंट मुंबई में हो रहा है, तो वो गोंदिया का प्रतिनिधित्व करते हुए तो वहाँ पर उसका खेल देखा गया, वो फर्स्ट प्राइज वहाँ प्राप्त किया और इसलिए महाराष्ट्र की टीम में उसका चयन हुआ. तो हमारे गोंदिया के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है.
खुद सुरुचि गुप्ता ने इस स्पर्धा में महाराष्ट्र के प्रदर्शन के बारे में खुशी व्यक्त की.
मैं गोंदिया से अकेले प्लेयर खेला है महाराष्ट्र टीम से, और हमारी मेल टीम और फीमेल टीम दोनों ही जीत चुके हैं, तो बहुत खुशी हो रही है. और हमारी गोंदिया के लिए तो ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात है. हमारे हाथ में दोनों ट्रॉफी आ चुकी है और गोल्ड मेडल्स भी. नेक्स्ट ईयर भी मैं जाऊंगी खेलने के लिए.
ये खेल दृष्टिहीन खिलाड़ी बॉल के अंदर डाली गई घुंघरुओं की आवाज के आधार पर लकड़ी के फ्लोर पर खेलते हैं. दृष्टिहीन बच्चों की प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से 2016 से राष्ट्रीय गोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. परिक्रमा के लिए अंकिता आप्टे, आकाशवाणी मुंबई.
The annual Saras Mela, popular among Chinnayites, is being held this year at the YMCA grounds in Chennai. Saras is an initiative by the Union Ministry of Rural Development in collaboration with state governments, aiming to empower rural artisans by providing platforms for product display and sales. Let us listen more from a correspondent, Blessy from Chennai.
Tamil Nadu deputy chief minister Udayanidhi Stalin inaugurated on Friday the state level sale of articles of rural artisan society Saras exhibition at the YMCA grounds in Nandanam Chennai. The event was organized by Tamil Nadu corporation for development of women. The annual mela is hugely popular for it showcases the magnificent products of artisans from across the country. Further, it provides a platform for selling the products crafted by self-help groups from Tamil Nadu and across India, thus offering creating a big opportunity for the women entrepreneurs. The Tamil Nadu SHG women stand to gain extensively and are looking forward to build upon their recent success from the Marina Food Festival that was held last week. The exhibition features 110 stalls showcasing Andhra Pradesh wood carvings, Telangana's kalamkari bags, Kerala's traditional foods, Gujarat's hand-woven garments, among others. Additionally, Tamil Nadu SHG showcase products like Tanjore dolls, Nachiyar Koil lamps, Erode mats, Kanchipuram silk saris, Kolli Hill coffee and more. The organizers' effort to schedule the events along with the Chennai Book Fair in the same venue is expected to pay huge dividends to the nationwide artisans. The Mela is open up to January 9th between 10 a.m. and 8 p.m. every day. This is Blessy from Akashvani, Chennai.
और परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ है रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क निदेशालय द्वारा प्रस्तुत रक्षा समाचार कैप्सूल का, तो आइए सुनते हैं प्रसारण अधिकारी आनंद सौरभ की रिपोर्ट.
भारतीय नौसेना वर्ष 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के तौर पर मना रही है और इस थीम के अंतर्गत भारतीय नौसेना नेवल सिविलियंस के वेलफेयर और उनके उत्थान के लिए कई अहम कदम उठा रही है. इस मौके पर हमने असिस्टेंट चीफ ऑफ पर्सनल रियर एडमिरल आदित्य हारा जी से बातचीत की. आइए सुनते हैं इस साक्षात्कार के प्रमुख अंश. सर, अगर शुरुआत करें तो इंडियन नेवी यह वर्ष ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस मना रही है, क्या सिग्निफिकेंस है इस थीम का?
2024 हमने ईयर ऑफ नेवल सिविलियन घोषित किया था क्योंकि नेवल सिविलियन ने बहुत अहम रूप हमारे ऑपरेशंस में फॉलो करते हैं, बहुत क्रिटिकल है हमारे नेवल ऑपरेशंस रन करने के लिए. तो जो पूरा ओवरऑल फंक्शनिंग, ओवरऑल सक्सेस नेवी का है वो नेवल सिविलियन की फंक्शनिंग पे निर्भर है. हमें महसूस किया थोड़े वर्षों तक कि भाई काफी चीजें हमें जोड़ लगानी पड़े, जैसे टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिसर्च डेवलपमेंट, इन चीजों में नेवल सिविलियन पूरे हमारे शोल्डर टू शोल्डर काम करते हैं. एंड जैसे आप जानते होंगे कि नौसेना में जहाज बहुत अहम जगह रखते हैं, उनका रिपेयर, उनका मेंटेनेंस, ये सब नेवल सिविलियन करते हैं. और हम ये दर्शाना चाहते थे कि बिहाइंड द सीन्स जो कंट्रीब्यूशन है नेवल सिविलियन का वो क्या क्या है. तो इस ईयर नेवल सिविलियन में इस चीज पे फोकस रखा, उनके एचआर, मैनेजमेंट, हाउसिंग, उनके जितने प्रमोशन रूल्स हैं, सब पे हमने इस साल में फोकस रखा है.
बिल्कुल सर. और अगर बात करें किन चुनौतियों का सामना करते हैं नेवल सिविलियंस भारतीय नौसेना के इन विभिन्न मिशनों में, तो और उसको किस प्रकार भारतीय नौसेना एड्रेस करती है?
नौसेना जैसा आप समझते होंगे 24 घंटे की सर्विस है. जहाज जो सेल कर रहे हैं वो 24 घंटे बाहर हैं और आपने देखा होगा कि हमारा जो रीच है भारतीय नौसेना का बहुत लार्ज है. तो ये भी नहीं कि एक टाइम जोन में है, कोई हमारा जहाज वेस्ट एशिया की तरफ है और दूसरा जहाज एकदम साउथ चाइना सी के अंदर है. और इन सब सपोर्ट सिस्टम्स में हमारे नेवल सिविलियन योगदान देते हैं. रात को जहाज लेट आता है, मशीनरी का कुछ क्रिटिकल इश्यू होता है या वेपन एंड सेंसर का कुछ क्रिटिकल इश्यू होता है, तो इसमें टाइम की भाई आप 9 बजे आओ, 5 बजे जाओ, वो वाला हमारा रोल नहीं है. तो नेवल सिविलियन काम करने में 24 आवर काम करते हैं. एम्युनिशन प्रिपेयर होना पड़ता है, सेंसर रिपेयर होना पड़ता है, और जहां तक आप लोगों को पता है कि कभी कभी दूर ट्रैवल करना पड़ता है, रिमोट लोकेशंस में रहते हैं. रिमोट लोकेशंस में हमारे आर्मामेंट स्टोर्स हैं, आर्मामेंट डिपोज हैं. तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान करते हैं इस चीज में हमारे नेवल ऑपरेशंस को रन करने के लिए.
जैसे कि आपने कहा कि शिप्स में और अदर एवेन्यूज में एज सच देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म पीपल एंड सिविलियंस, बट और बेहतर कोलेबोरेशन हो दोनों स्टेक होल्डर्स के बीच में इंडियन नेवी में, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप?
नेवी बहुत, वी आर कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड. ये मानना चाहूंगा कि हमारे इंटीग्रेशन इश्यू में कोई भिन्नता नहीं है. जैसे पहले सिविलियन ऑन बोर्ड सेल नहीं करते थे, बहुत शॉर्ट पीरियड्स के लिए ऑन बोर्ड जाते थे, उनके लिए जितनी भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे उनके लिए हमने पॉलिसी बनाई है, इंश्योरेंस स्कीम साइन किए हैं, वेरियस स्टेप्स लिए हैं कि डिफरेंस नहीं हो, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो. हम ऑफिस में जब काम करते हैं, बहुत एस्टैब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जहां पे नेवल सिविलियन के अंडर यूनिफॉर्म पर्सनल हैं एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. सो हमारे इसमें बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है, एकदम फुली इंटीग्रेटेड है. एंड हमारे लिए तो हमारे ऑपरेशंस की जो बैकबोन है वो हमारे नेवल सिविलियंस हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन इसमें पूरा कंप्लीट है.
सर, एज वी द डॉन ऑफ न्यू ईयर, इमिनेंट न्यू ईयर इज कमिंग एंड दिस ईयर द ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस कम टू एन एंड, सो हाउ डू यू सी आगे का रास्ता, कैसे देखते हैं आप आगे जो हमारा जो पथ है नेवल सिविलियंस को लेकर, क्या भविष्य देखते हैं आप?
हमने इस साल में बहुत पुश किया है नेवल सिविलियंस की वेरियस वेलफेयर स्कीम्स के लिए, एचआर मैनेजमेंट स्कीम्स के लिए, उनको फर्दर हायर इंटीग्रेशन हमारे साथ करने के लिए, एंड ये पुश हम जारी रहेंगे आगे। बहुत सी स्टेप्स हैं जो और भी बेटर करना चाहते हैं हम आगे, जैसे नेवल हाउसिंग, इसमें हम और जोर करते रहेंगे। हाउसिंग ऐसी चीज नहीं है जो आप एक साल में कर दें, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जो हम करना चाहते हैं हाउसिंग का। हमारा रिक्रूटमेंट हम और भी स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, जो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो बेटर करना चाहते हैं और स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, ताकि जो नेवल सिविलियन है वो फर्स्ट चॉइस रहे एक सिविलियन को ज्वाइन करने के लिए। तो हमारा वो फोकस रहेगा हियर एंड आफ्टर दिस ईयर ऑफ द नेवल सिविलियन।
सर आखिर में वो जो नेवल सिविलियंस आपको सुन पा रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप?
मुझे इस पद पे बैठ के ये बहुत खुशी हुई है कि मैं ये इतने सारे शुभ कार्य कर पाया हूँ 2024 में, मेरे खुद बहनों और भाइयों के लिए, और मेरे लिए पर्सनली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ रहेगा 2024, जहां मैंने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाया हूँ। एंड आगे बढ़ते मैं यही चाहूंगा कि आप और मैं शोल्डर टू शोल्डर चलें, एंड इस देश, इस नेवी को आगे बढ़ाएं।
सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरभ।
और अभिषेक, अब बात कर लेते हैं खेल जगत की खबरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। मेलबर्न में जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी के बाद निचले क्रम की उम्दा बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में 9 विकेट पर 228 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 333 रन कर मैच पर शिकंजा कस लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 105 रन की बढ़त हासिल करने के बाद बुमराह के 4 विकेट और मोहम्मद सिराज के 3 विकेट की धारदार गेंदबाजी के बाद दूसरी पारी में 91 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। मार्नस लबुशेन और कप्तान पैट कमिंस ने इसके बाद 7वीं विकेट के लिए 57 और फिर नाथन लियोन और स्कॉट बोलेंड ने अंतिम विकेट के लिए 55 रन की अटूट साझेदारी कर टीम की कुल बढ़त को 300 रन के पार पहुंचाया और बुमराह ने इस दौरान 200 टेस्ट विकेट भी पूरे किए।
In chess, India's Koneru Hampi won a second women's title, beating Indonesia's Irene Sukender in the final round of the World Rapid Championship held in New York last night. Hampi finished the tournament with 8.5 points from 11 rounds to secure her victory. The top-ranked Indian is only the second player after China's Zhu Wenzhen to clinch the title more than once. And Indian chess grandmaster Hampi previously won the Rapid Championship in 2019 at Georgia. And now, listeners, we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember one of the earliest moderate leaders, Umesh Chandra Banerjee, who was born on December the 29th, 1844. He was the co-founder and the first president of the Indian National Congress.
Banerjee won a government scholarship to study law in England and was called to the bar in June 1867. In England, he founded the London Indian Society and advocated representative and responsible government in India. He returned to Calcutta in 1868 and, within a few years, became the most sought-after barrister in the High Court.
In 1883, he defended Surendranath Banerjee in contempt of court case against him in the Calcutta High Court. Umesh presided over the first session of Congress in 1885. In the 1886 session held at Calcutta, under the presidency of Dadabhai Nauroji, he proposed the formation of standing committees of the Congress in each province for better coordination of its work, and it was on this occasion that he advocated that the Congress should confine its activities to political matters only, leaving the question of social reforms to other organizations.
He was the president of the Indian National Congress again in the 1892 session in Allahabad. We pay tribute to this great leader.
We also remember revolutionary freedom fighter Bhupendra Kumar Datta, who died on the 29th of December 1979. A prominent Jugantar leader, he went on hunger strike for 78 days in Bilaspur jail in December 1917, which was till that time the longest ever period of hunger strike in any country.
Born on the 8th of October 1892 in the village Thakurpur in Jessore, now in Bangladesh, Datta got inspired by the anti-partition agitations of the Anushilan Samiti and joined the organization. In September 1915, after the death of Bagha Jatin, massive repression and imprisonment prevailed in India.
Bhupendra Kumar Datta was arrested on the 17th of May 1917. In jail, Jiten Lahiri and Bhupendra Kumar Datta went on a protest against the imprisonment of freedom fighters without habeas corpus and against the physical and moral torture meted out inside the prisons. They published an 8-page long appeal which was sent across to many important personalities to inform the country about the decision of a hunger strike.
Bhupen was later transferred to Bilaspur jail, where he continued his hunger strike for 78 days. He was released in 1920.
Arrested again on the 23rd of September 1923, Bhupen was deported to Mandalay in Burma, where Netaji Subhash Chandra Bose was also imprisoned soon after. Netaji presented him the book Memories of a Revolutionist that he had smuggled for Bhupen during his last trip to Europe.
After his release in 1928, Bhupen resumed his usual multifarious role of maintaining contacts with various Jugantar leaders, editing the journals, collecting arms and distributing them. He was jailed again for 8 years in 1930 for sheltering the absconding revolutionaries of the Chittagong Armory Raid. He edited the weekly newspaper Forward and was again detained in 1941 for 5 years.
Bhupen stayed back in East Pakistan after partition to rescue victims of communal riots and was even elected Member of Parliament. He supported a motion to make Bengali the official language of Pakistan in the Pakistan Constituent Assembly in 1948.
Bhupen came back to India in 1962 and devoted his time to the nation. We salute the great freedom fighter.
और अब याद कर लेते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को। उनकी आज पुण्यतिथि है। सन 1934 में ओंकारनाथ ठाकुर ने मुंबई में संगीत निकेतन की स्थापना की थी।
क्रिस्टिना जॉर्जिना रॉसेटी पास्ड अवे इन दिस डे 1894। शी वाज एन इंग्लिश राइटर ऑफ रोमांटिक डिवोशनल एंड चिल्ड्रंस पोएम्स इंक्लूडिंग गॉब्लिन मार्केट एंड रिमेंबर। शी आल्सो रोट द वर्ड्स ऑफ टू क्रिसमस कैरल्स वेल नोन इन ब्रिटेन, इन द ब्लिक मिडविंटर लेटर said by Gustav Holst, Catherine Kennicott Davis and Harold Darke, and Love Came Down at Christmas, also said by Darke and other composers.
और प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा की आज पुण्यतिथि है। वो सूफी गायन और दर्शन में अपनी विशेष रुचि के लिए भी जाने जाते हैं। और मंजीत बाबा पहले चित्रकार थे जिन्होंने पश्चिमी कला में प्रभावी ग्रे और ब्राउन से हटकर लाल और बैंगनी रंगों का प्रयोग किया था।
Anthony William Greig or Tony Greig passed away on this day in 2012. He was a South African-born cricketer and commentator. Greig qualified to play for the England cricket team by virtue of his Scottish father. He was a tall all-rounder who bowled both medium pace and off-spin.
और जयंतियों की बात करें तो आज सबसे पहले मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता दीनानाथ मंगेशकर की आज जयंती है। और वो गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले के पिता रहे हैं। और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 24 अप्रैल को यानी मास्टर दीनानाथ की स्मृति दिवस पर आयोजित किए जाने की परंपरा रही है।
Yes, and Rajesh Khanna, born Jatin Khanna, was born on this day 1942. He was an actor, film producer and politician who worked in Hindi films, considered one of the greatest and most successful actors in the history of Indian cinema. He is known as the first superstar of Indian cinema. His accolades include 5 Filmfare Awards, and in 2013 he was posthumously awarded the Padma Bhushan, India's third highest civil honor. Khanna debuted in 1966 Akri Khat, India's first official Academy Awards entry in 1967.
बिल्कुल, राजेश खन्ना की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत था जैसे आपने बताया। और 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर पहुंच गए थे। और आज ही जयंती है लेखक, निर्माता और फिल्म निर्देशक रामानंद सागर की, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1917 में हुआ था। इनके करियर की शुरुआत राइडर्स ऑफ द रेल रोड यानी 1936 में बनी फिल्म के साथ हुई थी। और रामानंद सागर ने 22 छोटी कहानियां, 3 वृहत लघु कहानी और 2 क्रमिक कहानियां और 2 नाटक भी लिखे हैं।
यस, एंड सैयद मुस्तफा हुसैन किरमानी वाज बोर्न इन दिस डे इन 1949। ही इज एन इंडियन क्रिकेटर हु प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया एंड कर्नाटका एज अ विकेट कीपर। इन 2016 he was awarded the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award, the highest honor bestowed by BCCI on a former player.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर, साथ ही हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी 24 घंटे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं।
नमस्कार, नमस्कार।